नामों को रीनेम कर लीजिएगा अगर आपका असल नाम नज़र नहीं आ रहा तो। इंशाल्लाह हमने पेज नंबर शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह व कफा व सलाम अला इबादिही अल्लज़ीन इस्तफा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्कुर इस्म रब्बिका व तबत्तल इलैहि तब्तीला रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि ला इलाहा इल्ला हुव फ़त्तख़िज़्हु वकीला واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا إلى الآخر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما। तो पिछली क्लास में हमने आखिरी बात जो करी थी तवक्कुल के बारे में थी कि वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बू, कि जो शख्स अल्लाह ताला पर तवक्कुल यानी भरोसा करता है अल्लाह उसके सब मुहिमात और मुश्किलात के लिए काफ़ी हो जाता है। ये पढ़ लिया था, मेरा नहीं ख्याल, एक्चुअली मुझे लग रहा नहीं पढ़ा था, पेज नंबर 594 पे हमने छोड़ा था ना, फ़ायदा मुहिमा पढ़ लिया था। ज़िक्रुल्लाह से मुदावमत से क्या मुराद है कि जिसमें कोई कसूर और फतूर ना हो। फिर ज़िक्र इस्म ज़ात यानी अल्लाह अल्लाह का तकरार भी मामूर भी ही ज़िक्र इबादत है, ये भी हमने पढ़ लिया था। और इसके बाद फिर रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि ला इलाहा इल्ला हुवा फ़त्तख़िज़्हु वकीला, इसके तहत हमने वकील का मफहूम भी पढ़ लिया था और कि अपने सब कारोबार मामलात और हालात को अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दो, इसी का नाम इस्लाह में तवक्कुल है। इसके बारे में काफ़ी बात हुई थी कि तवक्कुल के मामले में दो गलतियां होती हैं, अफरात और इफरात और तफरीत की शक्ल में दो गलतियां होती हैं। इफरात क्या हो जाती है कि बिल्कुल तवक्कुल नहीं करते, सारा काम खुद ही करते हैं और अपने ही कामों पर भरोसा होता है और जिस काम के लिए हम मेहनत कर रहे होते हैं तो हम फिर उसके नतीजे को भी डिमांड या एक्सपेक्ट करना शुरू हो जाते हैं कि बस मैंने काम किया है ना तो अब मुझे नतीजा मिलना चाहिए, और जब नतीजा नहीं मिलता है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तो फिर फ्रस्ट्रेट होते हैं और गुस्सा आता है और डिप्रेशन होती है वगैरह, राइट। और फिर इसके नतीजे में इंसान जो है ना फिर क्योंकि डिप्रेस होता है या फ्रस्ट्रेट होता है या गुस्से में आता है तो अब जो है ना वो और ज़्यादा अमल करने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो ऐसे अमल करता है कि जैसे कि पहले उसने नहीं किए थे। पहले तो चलो वो जायज़ हदूद में रह करके बहुत ज़्यादा अमल कर रहा था, ठीक है, लेकिन नतायज जब जायज़ तरीके से नहीं मिलते हैं तो फिर नाजायज़ तरीके इस्तेमाल करना भी शुरू कर देता है, सही है। तो ये आपको बताया था ना कि ये नाजायज़ तरीके इस्तेमाल करना ये एक्चुअली एक सज़ा होती है कि हमने अपने काम के ऊपर भरोसा क्यों किया, हमें तो अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करना चाहिए था और हमें तो अल्लाह ताला के सुपुर्द करना चाहिए था कामों के नतायज को, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया ना तो अब ये एक गलत काम हो गया हमसे, ठीक है, ये एक एक गुनाह की एक शक्ल है ये भी, ठीक है, कि अल्लाह ताला की हमने को हमने वो मुकाम नहीं दिया जैसे कि अल्लाह ताला को देना चाहिए था, ठीक है, तो ये गुनाह नहीं है तो फिर और क्या गुनाह है, सही है, ये तो जुल्म है ना अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर, हम मतलब हमने जुल्म किया ना अल्लाह ताला के साथ कि अल्लाह को वो मुकाम नहीं दिया भरोसा करने वाला मुकाम जैसे कि अल्लाह को देना चाहिए, तो अब हर गुनाह का फिर यानी हर गुनाह का फिर की सज़ा मिलती है, और वो सज़ा फिर ये मिलती है कि इंसान फिर गुनाह के रास्ते के ऊपर आगे बढ़ता है या उसको बढ़ाया जाता है आगे, ठीक है, तो अब जो है ना नाजायज जराए भी इस्तेमाल करना शुरू कर देता है ये, ठीक है। तो ये तफरीत यानी क्या करेंगे इसको, इफरात कहेंगे, ठीक है। और तफरीत क्या हो गई कि बिल्कुल ही अमल नहीं करता, ठीक है, यानी असबाब भी इख्तियार नहीं करता, सुन्नत भी नहीं करता, ठीक है, और बिल्कुल ही हाथ पैर छोड़ करके बैठा रहता है। और फिर उसके बाद फिर कभी कोई बहाना बनाता है, कभी कोई बहाना बनाता है कि बस अल्लाह है ना, अल्लाह कर देगा सारा काम, ठीक है। तो ये सब बहानेबाजियां होती हैं। बहरहाल, तो ये तो तवक्कुल के बारे में बात थी। अब मजीद जो उन्होंने लिखा है वो भी हम पढ़ेंगे कि इस सूरत में जो अहकाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए गए हैं ये उनमें पांचवा हुक्म है। अच्छा, ये हम पढ़ चुके थे कि इमाम याकूब करखी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि शुरू सूरत से इस आयत तक मुकामात सुलूक की तरफ इशारा है। तो ये मकामात सुलूक का जिक्र यहाँ पर भी आया है और आगे एक दफ़ा फिर आएगा, तो वहाँ पर फिर इसके बारे में मज़ीद बात करेंगे। यानी रात में अल्लाह ताला की इबादत के लिए खलवत, ये पहला मुकाम हो गया। कुरान करीम में इश्तिगाल दूसरा मुकाम हो गया। जिक्रुल्लाह पर दवाम ये तीसरा मुकाम हो गया। मासिवल्लाह से एराज व तर्क ताल्लुक, यानी अल्लाह के सिवा सारी चीज़ों से एराज करना और तर्क ताल्लुक करना, ये चौथा मुकाम हो गया। तबत्तुल, राइट, तबत्तुल का हुक्म यही था ना कि हर चीज से तुम कटो। और पांचवा क्या था कि अल्लाह ताला पर, नहीं, फत्तखिज़ु वकीला। फत्तखिज़ु वकीला का मतलब अल्लाह ताला पर तवक्कुल करो। तो तवक्कुल के आखिरी हुक्म से पहले अल्लाह जल्ला शानहु की सिफत रब्बुल मशरिकी वल मगरिबी बयान करके इस तरफ इशारा कर दिया कि जो जात पाक मशरिक व मगरिब यानी सारे जहान की पालने वाली और उनकी तमाम जरूरियात इब्तिदा से इंतहा तक पूरा करने की मुतकफ़िल है, ठीक है, यानी उसने अपने ऊपर ये सारा का सारा सारी की सारी जिम्मेदारी ली हुई है। क्योंकि रब तो वही होता है जो कि इब्तिदा से लेकर के इंतहा तक सारी जरूरियात को पूरा करे, ठीक है ना, इसी को कफील कहते हैं। और रब यही, रब का मतलब यही होता है, ठीक है। तो जिसने मशरिक व मगरिब की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली हुई है तो भाई हम उसके ऊपर क्यों भरोसा नहीं करते, हम कैसे उसके ऊपर भरोसा नहीं करते। हालांकि जुबान से तो हम बार बार बोलते हैं रब 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 या रब या रब, रब बना आतिना फिर दुनिया, हाँ, जब दुआ करते हैं तो रब के नाम से दुआ करते हैं ना, रब बना आतिना, ए मेरे रब, ठीक है। तो रब की तकरार तो हम बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन रब का मतलब भी समझते हैं या इसका इस्तेहजार भी हमारे जहन में होता है कि नहीं होता। तो अल्लाह ताला ने रिमाइंडर्स दिए हैं ना कुरान के अंदर, तो इसी वजह से फत्तखिज़ु वकीला का जो हुक्म दिया उस हुक्म से पहले फिर रिमाइंडर दिया कि देखो ये जो वकील बनाने का हुक्म दिया जा रहा है ना, तो ये किसी ऐसे एरे गैरे नथु गैरे को वकील बनाने के लिए नहीं कहा जा रहा, बल्कि रब्बुल मशरिकी वल मगरिबी इसको वकील बनाने के लिए कहा जा रहा है। तवक्कुल और भरोसा करने के काबिल सिर्फ वही जात हो सकती है और इस पर भरोसा करने वाला कभी महरूम नहीं रह सकता। जैसे कि कुरान करीम का इरशाद है, वमन यतवक्कल अल्लाह फहुव हस्बुह, यानी जो शख्स अल्लाह ताला पर तवक्कुल करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। सही है, तो अल्लाह पर तवक्कुल करना, लेकिन जिस तरह से बाकी सारी चीजें सीखनी पड़ती हैं उसी तरह से तवक्कुल भी सीखना पड़ता है, वरना तवक्कुल हम कर नहीं रहे होते लेकिन शैतान हमें दिलासे दे रहा होता है कि तुम तवक्कुल कर रहे हो, हालांकि हम कर नहीं रहे होते तवक्कुल, हम कुछ और कर रहे होते हैं। हम क्या कर रहे होते हैं, उमूमी तौर पर हम जिद कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, जिद कर रहे होते हैं, हठ धर्मी कर रहे होते हैं, ठीक है, और तकबर कर रहे होते हैं, एक्चुअली हम तवक्कुल नहीं कर रहे होते, ठीक है। लेकिन शैतान उन हमारे तकबर को, हमारी जिद को कि भाई मैं नहीं हेल्प लूंगा, है ना भाई, हम करते हैं ना इस तरीके से, जी मैं नहीं हेल्प लूंगी किसी की, ठीक है, तो शैतान कह रहा होता है हाँ, तुम तो तवक्कुल कर रही हो, तुम किसी की हेल्प नहीं लोगी ना, ये तवक्कुल है ये। हालांकि ये जो हम कह रहे होते हैं ना मैं किसी की हेल्प नहीं लूंगी, ये हम जिद कर रहे होते हैं, ये तवक्कुल नहीं कर रहे होते, लेकिन शैतान इसको तवक्कुल बना के पेश करता है। समझ रही है बात, शैतान इसी जिद को तवक्कुल बना के पेश करता है, तो जिद करने वाला समझता है कि मैं तवक्कुल कर रहा हूं। सही है भाई, शैतान अगर दुनिया में ना होता ना तो मसला नहीं था कोई, ठीक है, लेकिन शैतान जो कि है तो अब शेख के बगैर गुजारना नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो शेख ही बताता है ना कि आप जिस चीज को जिद, जिस चीज को तवक्कुल कह रही हैं ये तवक्कुल नहीं है, ये जिद है, ठीक है। शैतान उधर वाला काम कर रहा होता है, वो उसको उल्टा बना के पेश कर रहा होता है, और शेख जो है ना इस उल्टी को सीधा कर रहा होता है कि नहीं, ये तवक्कुल नहीं है, ये तो जिद है। ठीक है, तो शैतान है इसी वजह से शेख भी है, अगर शैतान ना होता तो शेख की भी कोई जरूरत नहीं थी। बात समझ में आ रही है? ये है शेख। ठीक है, किसी को कोई इश्काल है इसके ऊपर? शेख के बगैर गुजारा हो सकता है फिर? कोई कोई एतराज कि नहीं, मेरे मेरे साथ शैतान ऐसा नहीं कर सकता। शैतान तो मेरी बहू के ऊपर सारा अमल करता है ना। सास कहती है कि शैतान तो बहू के से गलत काम करवाता है, और बहू कहती है कि नहीं, शैतान तो सास से गलत काम करवाता है। ठीक है ना, नंद कहती है कि वो तो भावच से गलत काम करवाता है, भावच कहती है कि नहीं, शैतान नंद से गलत काम करवाता है, मुझसे कोई थोड़ी गलत काम करवा सकता है, राइट? मुझे धोखा कोई थोड़ी दे सकता है शैतान, सही है? तो भाई ऐसा है तो नहीं ना। ठीक है, अच्छा, तवक्कुल के शरी मानी क्या है? अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा के ये मानी नहीं है कि कस्ब मुआश और दफ़ बला के जो असबाब व आलात कुदरत हक ने आपको अता फरमाए हैं उनको मुअत्तल करके अल्लाह पर भरोसा करो। ठीक है, कि इन असबाब को मैं इख्तियार नहीं करूंगा, मैं किसी से हेल्प नहीं लूंगा, मैं अल्लाह पर तवक्कुल करूंगा, नहीं, ये नहीं है इसका मतलब। ठीक है, असबाब जो जायज असबाब हैं तो उनको इस्तेमाल करना है, तो बल्कि हकीकत तवक्कुल की ये है कि अपने मकासद के लिए अल्लाह की दी हुई कुव्वत व तवानाई और जो असबाब मुयस्सर हैं उन सब को पूरा इस्तेमाल करो, मगर असबाब मादिया में गुलू, गुलू का मतलब कि आप यानी इन्हिमाक, अगला गुलू और इन्हिमाक, ठीक है, मुतरादिफ वर्ड्स हैं, एक्सेस ना करो उसके अंदर, तो गुलू और इन्हिमाक ज्यादा ना करो आमाले इख्तियारिया को कर लेने के बाद नतीजे को अल्लाह के सुपुर्द करके बेफिक्र हो जाओ। ठीक है, तो डेफिनेशन तो यही है, थियोरेटिकल डेफिनेशन, लेकिन इसको प्रैक्टिकल में लाना इतना आसान काम अगर होता तो हर बंदा ही पहुंच जाता है तवक्कुल के बड़े मुकाम के ऊपर। अच्छा, किसी ने प्राइवेटली मैसेज लिखा है तो मैं पढ़ता हूँ, आप जरा गौर से सुन लीजिएगा, कि कहती हैं कि द सेम थिंग इज विद दुआ ऑल्सो, कि यही मामला दुआ के साथ भी है, मीनिंग इफ वी आर इन ट्रबल इन प्रेइंग प्रेइंग ऑल द टाइम वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग एंड वी प्रे ऑल द टाइम नॉट सेटिस्फाइड विद आवर सिचुएशन इज इट अगेंस्ट तवक्कुल। यानी पूछ रही है कि दुआ के साथ भी यही मामला होता है कि जब हम किसी मुश्किल में होते हैं और हम उस मुश्किल को दूर करने के लिए दुआ करते हैं, दुआ करते हैं और करते रहते हैं, लेकिन वो मुश्किल दूर नहीं होती, तो हम क्यों दुआ करते हैं परेशानियों को दूर करने के लिए? इसका मतलब तो ये हुआ ना कि, यानी पूछने वाली ये पूछ रही है कि इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी हालत के ऊपर मुतमईन नहीं है, क्या ये तवक्कुल के खिलाफ है? ठीक है, तो नहीं, ये जैसे हेल्थ इश्यूज फॉर एग्जांपल होते हैं, ठीक है, आपकी तबीयत खराब है, बीमारी वगैरह लगी हुई है, आप दुआएं खूब मांग रही हैं कि बीमारी दूर हो जाए, बीमारी दूर हो जाए, लेकिन बीमारी दूर नहीं हो रही, तो क्या ये तवक्कुल के खिलाफ है कि आप दुआ मांग रही हैं बीमारी दूर होने के लिए? नहीं, ये तवक्कुल के खिलाफ नहीं है। ठीक है, जैसे कि पिछली भी एक क्लास में, शायद आप ही की क्लास में बात हुई थी कि हर कोई अय्यूब अलैहिस्सलाम के दर्जे पर नहीं है। ठीक है, तो हम अपने आप को अय्यूब अलैहिस्सलाम पर कयास भी नहीं कर सकते है ना, कि अय्यूब अलैहिस्सलाम का मामला जो किताबों में लिखा हुआ है वो क्या है कि बीमारी के ऊपर वो अल्लाह ताला से बीमारी दूर करने की दुआ ही नहीं करते थे, कि अल्लाह ताला ने मुझे जिस हाल में रखा है ये मेरे रब की रजा है, मैं इसी के ऊपर खुश हूँ। हत्ता के कीड़ा जो उनके जख्म के ऊपर चल रहा होता था, वो अगर कीड़ा जमीन पे गिर जाता था तो वो उस कीड़े को उठा करके अपने जख्म पर दोबारा रख लेते थे कि मेरा जख्म जो है वो इस कीड़े की गिजा है, ठीक है, तो मैं क्यों उसको इस गिजा से महरूम होने दूं? ठीक है, तो ये अय्यूब अलैहिस्सलाम का सबर था, लेकिन अय्यूब अलैहिस्सलाम का सबर जो था वो नबी का सबर था, और वो तो यानी अल्लाह के यानी मुकर्रब तरीन बंदों में से थे, तो हम अपने आप को उन पर कयास नहीं कर सकते। हमें बीमारी को दूर करने की दुआ मांगनी है, ठीक है, ये हमें हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने सिखाया है। ठीक है, हमारे जो नबी है ना वो रहमतुल आलमीन है ना, सारे आलमीन के लिए रहमत। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने हमें आसान रास्ते सिखाए, ठीक है, आप हैरान रह जाएंगे, नबी अलैहिस्सलाम जिस तरीके से आसानी को प्रिफर किया करते थे ना मुश्किल रास्तों के ऊपर, हैरान रह जाएंगे। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने उम्मत की आसानी की खातिर अल्लाह ताला ने उनके दिल में बात डाली कि तुम्हारी उम्मत में वैसी कुव्वत नहीं है, वैसे उनके यानी मामलात नहीं है जैसे कि पिछली उम्मतों के थे ना। तो अब इस उम्मत के लिए अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा आसानियाँ रखी हैं और बेशुमार इसके नज़ायर हैं इस बात के। तो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असबाब को इख्तियार करना सिखाया है और दुआ मांगना सिखाया है और परेशानी को रिमूव करने के लिए, कि नहीं इसको दूर करने के लिए अल्लाह ताला से आफियत मांगो, आफियत मांगो। अपने चचा को क्या दुआ सिखाई? आफियत की दुआ सिखाई, ठीक है? सब्र की दुआ मत मांगना। हाँ, जैसे पहले पिछली क्लास में शायद बात हुई थी कि अगर किसी मुसीबत में मुब्तला हो तो अल्लाह ताला से उस मुसीबत पर सब्र की दुआ मांग सकते हैं, ठीक है? लेकिन इन जनरल कि ए अल्लाह आप मुझे सब्र में एक बड़ा मुकाम अता फरमा दें, ये दुआ मत मांगना, ठीक है? क्योंकि ये बड़ा मुकाम अता करने के लिए पहले आजमाइशें भी आएंगी, ठीक है ना? फिर आप उसके ऊपर करेंगे, फिर आपको बड़ा मुकाम मिलेगा। तो ये आजमाइशें मांगने की कोई जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला से आफियत मांगे। तो बीमारी को रिमूव करने के लिए दुआ करना ये तवक्कुल के खिलाफ नहीं है, तवक्कुल इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, ठीक है? तो तवक्कुल का ये मफहूम, देखिए तवक्कुल का मामला जो है ना वो यहाँ पता लगता है कि जब हमें गुनाह सामने आ रहा हो, ठीक है, हम जो असबाब इख्तियार कर रहे हैं वो असबाब हमें गुनाह की तरफ लेके जा रहे हो, गुनाह वाली जिंदगी में दाखिल कर सकते हो वो असबाब। तो जब हमें समझाया जाए कि आप इन असबाब को इख्तियार ना करें, इनको तर्क कर दें, अल्लाह ताला पर भरोसा करें, अल्लाह ताला इन गुनाह वाले असबाब के बगैर ही आपका मामला अच्छा कर देगा, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? हमें समझाया जाए कि आप इन गुनाह वाले असबाब को इख्तियार ना करें, ठीक है ना, उसके बगैर ही अल्लाह ताला मामले को बेहतर कर देगा, उस वक्त हम बात मानते हैं कि बात नहीं मानते हैं, राइट? उस वक्त हम बात मान करके उन गुनाह वाले असबाब को छोड़ देते हैं कि नहीं छोड़ देते, ये है तवक्कुल का इम्तिहान। यहां पता लगता है तवक्कुल क्या है, ठीक है? तो बहुत ज्यादा ना अपने दिमाग को यानी मुश्किल में डालने की जरूरत नहीं है कि तवक्कुल क्या है और तवक्कुल इतना सिचुएशन के अंदर तवक्कुल करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं। सीधी सीधी सी बात है, गुनाह के रास्ते को इख्तियार करने के मौके पर जब हमें समझाया जाए कि नहीं करें, उसके बगैर ही मामला सही हो जाएगा, तो हम बात को मान करके रुक जाते हैं ना, तो हमने तवक्कुल इख्तियार कर लिया। और अगर हम नहीं रुकते हैं, इसका मतलब है कि हम तवक्कुल नहीं कर रहे हैं, ठीक है? मिसाल के तौर पर आजकल बहुत ज्यादा बात चल रही है कि जैसे स्कूलिंग सिस्टम के ऊपर बात चल रही है, ठीक है? तो अब स्कूलिंग सिस्टम के अंदर एक मिनट, आगे पढ़ते हैं कि तवक्कुल का ये मफहूम खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है। इमाम बगवी ने शरह सुन्ना में और बैहकी ने शेबुल ईमान में यह हदीस रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्ना नफ्सन लन तमूता हत्ता तस्तकमिलो हत्ता तस्तकमिला रिस्काहा, अल्ला फत अला फत्तकुल्लाह वज अजमिलू फित तलब। यानी रूहुल कुदस हज़रत जिब्राइल अमीन ने मेरे दिल में ये बात डाली है कि कोई शख्स उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक वो अपने मुकद्दर में लिखा हुआ अल्लाह का रिस्क पूरा पूरा हासिल नहीं कर लेगा, ठीक है? तो हमें यानी जो हम गलतियां क्या करते हैं, जो मैं एक मिसाल आपको देने वाला था वो ये था कि जैसे स्कूलिंग सिस्टम है, ठीक है, स्कूलिंग सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है? तो हर किस्म की प्रॉब्लम्स हैं। जो लोग दीनदार हो जाते हैं ना उनको सिर्फ एक दो प्रॉब्लम्स नजर आती हैं, ठीक है? दीनदार लोगों को स्कूलिंग सिस्टम में एक दो प्रॉब्लम्स नजर आती हैं। वो क्या नजर आती हैं? माहौल, ठीक है भाई, माहौल बड़ा खराब है जी वहाँ पर, ठीक है ना? और दूसरी चीज क्या नजर आती है कि करिकुलम जो होता है, जो बुक्स होती हैं, उन बुक्स के अंदर बड़ी गलत गलत बातें लिखी हुई होती हैं, ठीक है ना? और बस यहाँ से आगे हमें और कोई गलत बात नजर नहीं आती स्कूलिंग सिस्टम में, ठीक है? हालांकि ऐसा नहीं है। ये जो स्कूलिंग सिस्टम जो वेस्ट ने बनाया है, यूरोप और अमेरिका का बनाया हुआ जो स्कूलिंग सिस्टम है ना, इसके अंदर सिर्फ ये दो खराबियां नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी खराबियां हैं, ठीक है? तो इन खराबियों से अपने आप अपने बच्चों को हमने बचा करके उनको तालीम और तालीम दिलवानी है और उनकी तरबियत करनी है, ठीक है? हमें उनसे बचाना है। चाहे हम स्कूल में भेज करके बचाएं या ना भेज करके बचाएं, हमें वन वे और दी अदर इनकी बुराइयों से अपने बच्चों के जहनों को, उनके दिलों को बचाना है, ठीक है। लेकिन शैतान दिल में क्या डालता है कि अगर इस स्कूल सिस्टम के अंदर तुम्हारे बच्चे ने एक्सेल नहीं किया तो उस बच्चे की जिंदगी खराब हो जाएगी, ठीक है ना। अगर इस स्कूल सिस्टम के जरिए से उसने बहुत अच्छे अच्छे ग्रेड हासिल नहीं किए और बहुत अच्छे अच्छे जो है ना मेडल्स हासिल नहीं किए, तो इसका मतलब ये है कि वो कमा नहीं सकेगा, वो अच्छी जिंदगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसकी नहीं बन सकेगी और वो दुनिया में पीछे रह जाएगा, ठीक है। ये शैतान दिल में बात डालता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। जिस रब ने सारे रिस्क का जिम्मा अपने ऊपर लिया हुआ है, ठीक है ना, रब्बुल मशरिकी वल मगरिबी, तो ये कैसे हो सकता है कि कोई अपने बच्चों के दीन की हिफाजत के लिए, ईमान की हिफाजत के लिए कुछ इकदाम उठाए और रब जो है वो उसको रिस्क से महरूम कर दें इस वजह से कि जी उसने अपने ईमान की हिफाजत के लिए कोई कदम उठाए थे। तो खुसूसन जब मदरसे में डालने की बात की जा रही होती है कि बच्चों को आलिम बना दो, अब वैसे हम तो नहीं कहते किसी को कि अपने बच्चों को आलिम बना दो, ठीक है, लेकिन जो लोग कहते हैं कि बच्चों को आलिम बना दो तो उनके रास्ते में भी यही रुकावट होती है ना कि नहीं जी आलिम बनेगा तो खाएगा कहाँ से, राइट। आलिम बनेगा तो खाएगा कहाँ से, क्या मतलब कहाँ से खाएगा, तुम जो डॉक्टर बने हो तो तुम कहाँ से खाते हो, है? जो इंजीनियर बना हुआ है वो इंजीनियर कहां से खाता है, जो साइंटिस्ट बना हुआ है वो साइंटिस्ट कहां से खाता है, कहां से खाता है, रब के अलावा कोई और उसको खिलाता है? नहीं, आलिम कहां से खाएगा, राइट। आलिम ने तो अगर साइंस पढ़ ली होती है ना तो उसके ऊपर रिस्क की तंगी नहीं आती। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, ये है तुम्हारा दीन, ये है हमारा ईमान, है कि रिस्क जो है वो साइंस के और टेक्नोलॉजी के रास्ते से मिलता है, कुरान के और हदीस के रास्ते से रिस्क नहीं मिलता। किस किस्म का नाउज बिल्ला ये रब बनाया हुआ है हमने, कौन सा ये रब है, कौन सा ये खुदा है, कौन सा ये अल्लाह है जो कि अपने कुरान और हदीस के रास्ते से तो रिस्क नहीं देता और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रास्ते से रिस्क देता है, दुनिया परस्ती के रास्ते से रिस्क देता है, ये है हमारा रब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो तवक्कुल यहाँ पता लगता है कि बंदे की तवक्कुल है कि नहीं है, सही है। अय्यूब अलैहिस्सलाम बनने की कोई जरूरत नहीं है किसी को, ठीक है ना, सीधी सीधी बात है कि हम रब को रब मानते हैं कि नहीं मानते हैं। अच्छा, तो हदीस मुबारक का तो क्या है कि नहीं मर सकते जब तक पूरा का पूरा रिस्क मिल नहीं जाए। रिस्क पहले तलाश करता है, मौत बाद में आके पकड़ती है। रिस्क पहले मिलता है, मौत बाद में मिलती है, ठीक है ना। मौत के फरिश्ते से कोई बच सकता है? हरगिज नहीं बच सकता। कहीं भाग जाए, कहीं छुप जाए, मौत का फरिश्ता उसको जाके पकड़ लेगा, लेकिन रिस्क मौत के फरिश्ते से पहले पकड़ता है बंदे को, राइट। ये बात समझ में आ रही है, ये बात याद रखनी चाहिए। रिस्क पहले पहुंचता है, मौत बाद में पहुंचती है। इसलिए तुम खुदा से डरो और अपने अपने मकासद की तलब में इख्तिसार से काम लो। ज्यादा मुनहमिक ना हो कि कल्ब की तवज्जो सारी इन्हीं मादी असबाब और आलात में महसूर होकर रह जाए और अल्लाह ताला पर तवक्कुल करो, ठीक है। तो बस अपनी ये सारी देखें, सारी जो बातें हैं ना ये सब सोच की बातें हैं, फिक्र की बातें हैं ये सब, ठीक है। सोच क्या होती है? सोच गंदी होती है या सोच अच्छी होती है, राइट। रिस्क तो जो मुंह से रिस्क जाना है वो तो जाके रहेगा, ठीक है ना, उसको आप रोक नहीं सकते। अपनी सोच को गंदी करके या अच्छी करके रिस्क को ना आप बढ़ा सकते हैं ना आप घटा सकते हैं, रिस्क तो मिलेगा, ठीक है ना। रिस्क तो दोनों सूरतों में मिलेगा, चाहे आपकी सोच अच्छी हो चाहे आपकी सोच गंदी हो, रिस्क तो मिलेगा। लेकिन आखिरत में आपके साथ क्या होगा ये किस पे डिपेंड करता है? ये सोच पर डिपेंड करता है, ये सारा सोच का मसला है, ठीक है। फिक्र, सोच, आइडियोलॉजी, जहन के ख्यालात, ये है असल चीज, ठीक है। तो अल्लाह ताला पर तवक्कुल करो, यानी नबी अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं कि भाई यानी अपनी सोच को ठीक करो, अल्लाह ताला पर तवक्कुल करो। तिर्मिजी में हजरत अबू जर गफारी रज़ी अल्लाह की रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तर्क दुनिया इसका नाम नहीं कि तुम अपने ऊपर अल्लाह की हलाल की हुई चीजों को हराम कर लो या जो माल तुम्हारे पास हो उसे खामखा उड़ा दो कि नहीं भी मैं तो उड़ा दूंगा, गरीबों में बांट दूंगा और उसके बाद फिर मैं अल्लाह ताला पर तवक्कुल करूंगा, दोनों चीजों से मना कर दिया, राइट। बल्कि तर्क दुनिया इसका नाम है कि तुम्हारा एतमाद अल्लाह ताला के हाथ में जो चीज है उस पर ज्यादा हो बनिस्बत उसके जो तुम्हारे हाथ में है। हमारे हाथ में क्या होता है, हमारे हाथ में एफर्ट्स होते हैं, राइट, हमारे हाथ में अमल होते हैं जो कि हम अपने हाथ से करते हैं, ठीक है। नहीं, इनके ऊपर भरोसा नहीं करना है, अपने हाथ की चीजों पर भरोसा नहीं करना है, बल्कि अल्लाह ताला के पास जो चीजें मौजूद हैं उनके ऊपर हमारा भरोसा ज्यादा हो। सिर्फ सोच पे तो गुनाह नहीं मिलता जब तक अमल ना हो, बहुत अच्छी बात करी आपने, लेकिन जब सोच गंदी होती है तो फिर अमल उसके बाद फॉलो करता है ना, ठीक है। जब सोच गंदी होगी तो अमल फिर सोच के हिसाब से ही होता है ना, तो सोच को ठीक करेंगे तो अमल फिर सोच के हिसाब से ठीक होगा, वरना नहीं होगा। इसको कहते हैं किताबी इल्म, राइट, ये बयान सुने हुए इन्होंने असल में, तो बयान सुनने चाहिए। मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा बयान सुनने से, लेकिन बात को मुकम्मल समझने के लिए फिर पूछना भी पड़ता है ना, तो अच्छा क्या पूछ लिया। वस्बिर अला मा यकूलूना वहजुरहुम हजरन जमीला। बकौल इमाम करकी रहमतुल्लाह अलैह के ये छठा हुक्म है जो उन्होंने ऊपर लिस्ट बनाई थी, तो उसके मुताबिक छठा हुक्म जो है सूरह मुजम्मिल के अंदर, हजरन वहजुरहुम हजरन जमीला, बल्कि वस्बिर अला मा यकूलूना, ये छठा हुक्म है सबर करने का जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया है, यानी लोगों की ईज़ाओं और गालियों पर सब्रे जमील, ठीक है। ये मुकामात सुलूक में सबसे आला मुकाम है कि दुश्मनों की जफा व ईजा पर सबर किया जाए, यानी ये हजरात जिन लोगों की खैरख्वाही और हमदर्दी में अपनी सारी कुव्वत और तवानाई और सारी उम्र खर्च करते हैं, उन्हीं की तरफ से उसकी जजा में गालियां, ईजाएं, तरह तरह के जोर व सितम उनके मुकाबले में आते हैं, उन पर सब्र जमील करना यानी इंतकाम का इरादा भी ना करना, ये वो आला मुकाम है जो इस्लाह सूफिया में फिनाए कामिल के बगैर नसीब नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर फिर मकामात सुलूक की टर्म आई है। तो मकामात सुलूक क्या होते हैं, ये गोया के एक सीढ़ी है, ठीक है। जरा अपने तस्वीर में एक सीढ़ी को लाएं, तो सीढ़ी के अंदर दर्जे बने हुए होते हैं ना, स्टेप्स होते हैं सीढ़ी के, ठीक है। सीढ़ी की इब्तिदा में जो सालिक होता है ना, वो गोया के सीढ़ी के नीचे है, और सीढ़ी के ऊपर गोया के अल्लाह ताला से मुलाकात है। सीढ़ी के बिल्कुल जो डेस्टिनेशन है, जो टॉप है, वहां पर अल्लाह ताला से मुलाकात है। तो अल्लाह ताला से मुलाकात करने के लिए इस सीढ़ी को चढ़ता है सालिक, ठीक है। इस रास्ते का मुसाफिर जो होता है उसको सालिक कहते हैं, वो इस सीढ़ी को चढ़ता है। तो इस सीढ़ी के जो स्टेप्स है ना, उनको मुख्तलिफ मशाइख ने मुख्तलिफ नाम दिए हैं, ठीक है, मुख्तलिफ नाम दिए हैं। ये हर यानी तमाम मशाइख के नज़दीक एक नहीं है, किसी के नज़दीक उन्होंने जो नाम दिए हैं वो उनका एक ऑर्डर है, दूसरे मशाइख के नज़दीक इसका थोड़ा सा डिफरेंट ऑर्डर है, किसी के नज़दीक जैसे मिसाल के तौर पर इन्होंने लिखा है ना कि यानी लोगों की ईज़ाओं और गालियों पर सब्र, ये सबसे ऊंचा मुकाम है, ठीक है। इसको कहते क्या है, इसको कहते हैं तफवीज, ठीक है, अपने मामले को अल्लाह ताला के सुपुर्द कर देना, हवाले करना। एक्चुअली नहीं, ये तो सबर है, ठीक है, तफवीज का मामला तो ऊपर था, ठीक है, कि अपने मामला और हालात को ऊपर अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दो, वो तफवीज कहलाता है। ता फा वाओ या दौद, तफवीज, सुपुर्द करना अल्लाह के, ठीक है, उसी को तवक्कुल भी कहा जाता है। यहाँ पर जिस मुकाम का जिक्र हो रहा है इसको सबर कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो लिखा है ना, हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह ने, इन्होंने सबर को सबसे ऊंची सीढ़ी करार दिया है, ठीक है। लेकिन जो हमारे सिलसिले के मशायख हैं, या आप सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के मशायख अगर उनको कहना चाहें, तो उनके नजदीक जो है ना सबसे ऊंचा मुकाम जो है वो, उसको उन्होंने रजा का नाम दिया है, रजा, ठीक है, यानी अल्लाह ताला की खुशी, अल्लाह ताला की रजा, वो सबसे ऊंचा मुकाम है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे है, लेकिन ये सिर्फ यानी टर्म्स का डिफरेंस है, असल में मकसूद और असल में मानी और मफहूम सबके नजदीक एक ही है, ठीक है। कोई इसको सबर कहता है, कोई उसी चीज को जो है वो रजा कह देता है, ठीक है। तो ये मकामात सुलूक का थोड़ा सा एक आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि गोया के सीढ़ी के स्टेप्स जो होते हैं ना, वो मकामात सुलूक कहलाते हैं। ठीक है, हमारे मशायख के नज़दीक अगर कोई लिखना चाहे तो मकामात सुलूक वो इस तरह से हैं। ठीक है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, जिनके पास ऑलरेडी किताब मौजूद है हजरत के बयान पर मुश्तमिल वो उस किताब में भी देख सकते हैं। तो हमारे मशायख में सबसे जो पहला मुकाम है, पहला स्टेप है, उसको तौबा कहते हैं। ठीक है, तौबा करने से काम शुरू होता है। तो पहला स्टेप है तौबा। इनको म्यूट कर दें प्लीज। दूसरा स्टेप जो है ना, वो तौबा के बाद दूसरा स्टेप इनाबत कहलाता है। ठीक है, इनाबत। तीसरा स्टेप जुहद कहलाता है, जुहद। तफसील अगर करना शुरू हो जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, हजरत ने तो 10 दिनों में तफसील करी थी, तो हम तो 10 मिनट में भी करेंगे तो टाइम काफी लग जाएगा फिर भी। तो तीसरा होता है जुहद, और चौथा मुकाम कहलाता है मुजाहिदा, पांचवा मुकाम कहलाता है वरा, जिसको तकवा भी कहते हैं। पांचवा मुकाम वरा या तकवा, छठा मुकाम सबर। ठीक है, जैसे कि इन्होंने लिखा ना, सबर, सब्रे जमील, ये यानी सबसे ऊंचा मुकाम है हमारे मशायख के नजदीक, ये छठा मुकाम मुकाम है सबर। और सबर के बाद सातवां मुकाम शुक्र। ठीक है, और शुक्र के बाद आठवां मुकाम तवक्कुल। ओके, तवक्कुल और तफवीज में हमारे मशायख ने थोड़ा सा डिफरेंस रखा है। ठीक है, तो आठवां मुकाम तवक्कुल है, नवां मुकाम तफवीज होता है। तफवीज, तो तफवीज के लिए एक्चुअली ज्यादा सूटेबल वर्ड ना सुपुर्दगी इस्तेमाल करते हैं, सुपुर्दगी। ठीक है, अपने आप को कंप्लीटली हवाले कर देना। ओके, तो तवक्कुल से एक ऊंच, एक लेवल ऊपर है ये तफवीज का मुकाम। और दसवां और आखिरी मुकाम ये रवा है, यानी राजी हो जाना अल्लाह ताला से, हर हाल में राजी रहना, जैसे अय्यूब अलैहिस्सलाम। ठीक है, कहते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाही अला कुल्ले हाल। ठीक है, तो ये 10 मुकामात हो गए। ये मुकामात सुलूक हमारे मशायख के नजदीक हैं। दूसरे मशायख के नजदीक जो है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होते हैं, या मुख्तलिफ टर्म्स इस्तेमाल होती हैं सेम चीजों के लिए दूसरे मशायख के यहाँ। अच्छा, अब इसके बाद दूसरी जो एक टर्म इन्होंने इस्तेमाल करी है यहाँ पर, वो क्या है कि इस्तिलाह सूफिया में फिनाए कामिल जिस चीज को कहते हैं, ये फिनाए कामिल के बगैर ना ये मकामात सुलूक हासिल नहीं होते इंसान को। ठीक है, जैसे कि इन्होंने लिखा है कि ये जो सब्रे जमील है, सब्रे जमील मकामात सुलूक में सबसे ऊंचा मुकाम है। ठीक है, तो सबसे ऊंचा मुकाम जो है ना, ये फिनाए कामिल के बगैर हासिल नहीं होता। हमारे मशायख के नजदीक यही बात आप रजा के लिए भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे मशायख के नजदीक रजा सबसे ऊंचा मुकाम है। तो रजा का मुकाम फिनाए कामिल के बगैर नसीब नहीं हो सकता। अब ये फिनाए कामिल क्या चीज होती है भाई, अगर आप में से कोई बताना चाहे, कोई वॉन्ट टू टेक अ शॉट एट इट, फिनाए कामिल होता क्या है? फिना, फिना किस चीज को फिना, क्या चीज फिना? ये आपसे सवाल पूछ भी इसलिए रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर पिछली क्लास में ही बात हो भी चुकी है। लफ्ज फिना इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन कॉन्सेप्ट पिछली क्लास में डिस्कस हो चुका है। तो फिना किसको कहते हैं भाई, या किस चीज की फिना की बात होती है यहाँ? या पिछली क्लास में क्या बात हुई थी जो कि इससे कनेक्ट होती है? अब ये जवाब, चलें हम आपको डांट से हिफाजत देते हैं थोड़ी देर के लिए, प्राइवेटली जवाब देने की बजाय लोगों के सामने जवाब दें। अपना नफ्स, अपने नफ्स की नफी करना। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब दिया माशाल्लाह आपने, क्योंकि पिछली क्लास में बात यही हुई थी कि अल्लाह दो कदम पर है। ठीक है ना, पहला कदम तू अपने नफ्स पर रख ले, तेरा दूसरा कदम अल्लाह पर, अल्लाह तक पहुंच जाएगा। अल्लाह पर नहीं, अल्लाह तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो नफ्स को कुचल दोगे, दबा दोगे उसको, नफ्स से मुतमइन्ना बना दोगे तो अल्लाह और तुम्हारे दरमियान रुकावट खत्म हो जाएगी। जब रुकावट खत्म हो गई, जब दीवार गिर गई, तो फिर अपने महबूब तक पहुंचना कौन सा मुश्किल काम है फिर उसके बाद, राइट? महबूब तो फिर बंदा यानी अट्रैक्ट होता है ना अपने महबूब की तरफ, ठीक है। तो फिना का मतलब जो है वो नफ्स की फिना है, अपने आप को फिना कर लेना, अपने नफ्स को फिना कर लेना, ख्वाहिशात को बिल्कुल खत्म कर देना, ठीक है। ख्वाहिशात जब खत्म हो जाती हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अपनी ख्वाहिशात जो होती है ना वो एक्चुअली अल्लाह की ख्वाहिशात के ताबे हो जाती हैं, ठीक है। इंसान की ख्वाहिशात अल्लाह की ख्वाहिशात के ताबे हो जाती हैं। अब ये कोई ऐसी चीज की ख्वाहिश नहीं करेगा कि जो कि अल्लाह ताला की ख्वाहिश के मुताबिक ना हो। ये है नफ्स की फिना का एक दूसरा अंदाज डिस्क्राइब करने का, ठीक है। मतलब दोनों का एक ही है, लेकिन ये फिना हासिल कैसे होती है? ये फिना जो है ये सुपुर्दगी के जरिए से हासिल होती है, ठीक है। तफवीज का मुकाम जिसको मिल जाता है ना, ठीक है, आपको जो लिस्ट लिखवाई है उसमें नवा मुकाम है ना तफवीज, अपने आप को हवाले कर देना, ठीक है। तो तफवीज जो करता है ना उसी को सबसे ऊंचा वाला मुकाम मिलता है, क्योंकि भाई सातवीं सॉरी सीढ़ियां है ना, तो सीढ़ियों में से नवी सीढ़ी कौन सी है? तफवीज। तो नवी सीढ़ी पर जब कदम रखेगा तभी 10वीं सीढ़ी पर पहुंचेगा, जंप करने वाला तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं यहाँ पर, ठीक है ना। तो नवी सीढ़ी पर कदम रख लेगा तब 10वीं सीढ़ी पर पहुंचेगा। क्या मतलब? जब तक तफवीज नहीं करेगा उस वक्त तक रजा वाली आखिरी सीढ़ी पर नहीं पहुंच सकता, ठीक है। तो तफवीज शर्त है इसके लिए, अपने आप को हवाले कर देना। लेकिन इंसान अपने आप को हवाले करे कैसे? किसी ऐसी चीज के सामने, किसी ऐसी जात के सामने कि जिसको उसने कभी देखा ही नहीं है, किसी ऐसी जात के सामने अपने आप को हवाले कैसे करे जिसको इसने कभी देखा ही नहीं, जिसकी इसने कभी बात ही नहीं सुनी, आवाज ही नहीं सुनी, कैसे उसके सामने हवाले करे? इंसान ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है ना। अनदेखी चीज के सामने, अनदेखी चीज के हवाले अपने आप को इंसान कर नहीं सकता। ये हमारी लिमिटेशन है, ये हमारी क्या कहेंगे इसको, हद है। ये उर्दू में क्या कहते हैं लिमिटेशन को? ये हमारी हद है, हद, हद का लफ्ज बेहतर है लिमिटेशन को डिस्क्राइब करने के लिए। ये हमारी कमजोरी है या मजबूरी है, हम नहीं कर सकते। एक गायब चीज, गायब जात के सामने अपने आप को हवाले नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर ऐसा बोझ नहीं डाला जो कि हम कर ही ना सकें, ऐसी जिम्मेदारी नहीं लगाई जो कि हम कर ही ना सकें, ठीक है ना। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला किसी के ऊपर उतना बोझ नहीं डालते जितना वो उठा ना सके। तो जो काम हम कर ही नहीं सकते, हमारे अंदर कैपेबिलिटी है ही नहीं वो काम करने की, तो अल्लाह ताला ने हमसे ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं रखी। तो अल्लाह ताला ने फिर इसका क्या हल निकाला? जब गायब अल्लाह के सामने हम अपने आप को हवाले नहीं कर सकते, तो फिर अल्लाह ताला ने क्या इसका हल निकाला?
बिल्कुल
जी, म्यूट कर दीजिएगा। नबी भेजे, सही है, नबी भेजे। हम आसान आसान जुबान में तो नबी बोलेंगे ना भाई, शेख तो फिर वो जरा मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए, क्योंकि हर कोई तो फिर सुलूक के रास्ते पे नहीं चल रहा। तो नबी को तो सब मानते हैं ना, तो अल्लाह ताला ने अंबिया भेजे, ठीक है, कि मेरे सामने सुपुर्द करने के लिए तुम्हें इन नबियों के सामने अपने आप को सुपुर्द करना पड़ेगा, राइट? नबियों के सामने सुपुर्द करना पड़ेगा। क्यों भाई? इसलिए कि नबी जो है ना ये तुम्हारे जैसा इंसान है, राइट? इसको तुम देख सकते हो, इसको तुम सुन सकते हो, इसके साथ तुम जिंदगी गुजारते हो, इसके सामने अपने आप को सुपुर्द करना तुम्हारे लिए मुमकिन है, मुमकिन है, आसान नहीं कह रहा, मुमकिन है, अगरचे के तुम्हारा नफ्स तुम्हें करने नहीं देगा, शैतान तुम्हें करने नहीं देगा ये काम। वो एड़ी चोटी का जोर लगा देगा कि किसी तरीके से तुम्हें नबी के सामने अपने आप को सुपुर्द करने से रोक दे, और उसके लिए वो बड़ी बड़ी दलीलें इस्तेमाल करेगा। ठीक है, क्या दलीलें इस्तेमाल करेगा? शहवात वाली दलीलें इस्तेमाल करेगा, है? शहवात वाली दलीलें, ठीक है। शहवात वाली दलीलें क्या होती हैं कि ये जो नबी है ना, ये तो तुम्हें रोक देंगे तुम्हारी मन मर्जी वाली जिंदगी गुजारने से, तुम्हें तुम्हें जो है वो पाबंदियों में जकड़ देंगे, तुम्हारी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। तो नबी के सामने अपने आप को सुपुर्द ना करना, ये शहवात वाली दलीलें होती हैं। ठीक है, कि तुम्हारी शहवतें जो है ना वो खत्म हो जाएंगी, तुम उन शहवतों को नहीं पा सकोगे। तो इस तरीके से शैतान रोकता है। और दूसरी क्या दलीलें इस्तेमाल करता है? शुबहात वाली दलीलें। शुबहात वाली दलीलें शैतान क्या इस्तेमाल करेगा कि नबी कोई खुदा है? नबी कोई खुदा है? नबी कोई अल्लाह है? इसके सामने क्यों सुपुर्द कर रहे हो? सुपुर्द तो तुम्हें अल्लाह के सामने करना चाहिए अपने आप को, है ना? सुपुर्द तो तुम्हें खुदा के सामने करना चाहिए अपने आप को, नबी के सामने क्यों अपने आप को सुपुर्द कर रहे हो? ये वाली दलील कौन सी दलील कहलाएगी? ये शुबहात वाली दलील कहलाएगी। डाउट्स क्रिएट करता है वो, राइट? अल्लाह ताला के बनाए हुए निजाम के खिलाफ डाउट क्रिएट करता है। अल्लाह ने ये निजाम बनाया कि मेरे इस नबी के सामने अपने आप को सुपुर्द करो, और वो दिमाग में डाउट डालेगा कि नहीं, नबी के सामने क्यों करते हो? ये कोई खुदा है? इसने कोई तुम्हें तख्लीक किया है? ये कोई तुम्हें रिस्क देता है? ये कोई तुम्हारे जन्नत जहन्नम का फैसला करेगा? ये तो नहीं फैसला करेगा। इसके सामने क्यों सुपुर्द करते हो अपने आप को? सही है। तो वन वे और द अदर शैतान सुपुर्दगी से इंसान को रोकता है। ठीक है, मत सुपुर्द करना, क्योंकि उसको पता है कि अगर इन लोगों ने सुपुर्द कर दिया तो ये रजा के दर्जे में पहुंच जाएंगे, और जब रजा के दर्जे में पहुंच जाएंगे फिर मेरा जोर इन पर नहीं चल सकेगा। इसलिए कि जो रजा के दर्जे पर पहुंच जाता है, यही वो बंदा होता है जिसके बारे में अल्लाह कुरान में फरमाता है, ओ शैतान, इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, ये मेरे खास बंदे हैं, इनके ऊपर तुम्हारा जोर नहीं चलेगा। इस शैतान को ये बात पता है कि जो 10वें मुकाम पर पहुंच गया ना, रजा के मुकाम पर, अब मेरे जोर से वो आजाद हो जाएगा, इस पर मेरा जोर नहीं चल सकता। वो तफवीज के मुकाम पर एड़ी चोटी का जोर लगा देता है बंदे को रोक देने पर, रोक देने के लिए। ठीक है, इसी वजह से ना हम बहुत कुछ कर गुजरते हैं, बहुत सारे आमाल कर लेते हैं, लेकिन तफवीज नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि शैतान हमें करने नहीं देता, नफ्स हमारा ना हमें करने नहीं देता। बाकी सारी चीजों के ऊपर वो हथियार डाल देगा, हाथ उठा लेगा, लेकिन तफवीज नहीं करने देगा। ठीक है, और जैसे कि अगर आप में से किसी ने इस मुराकबा मजलिस जो अभी कल हुई है उसका बयान सुना होगा, तो उसमें साजिश ने ही बात समझाई थी कि हम जिस दौर में रह रहे हैं ना, हम जिस दौर में रह रहे हैं, उस दौर में जो एजुकेशन सिस्टम है, जो मीडिया का सिस्टम है, ये दोनों चीजें, राइट, ये दोनों चीजें जो है ना तफवीज के सख्त खिलाफ हैं। इन्होंने इंसानियत का जहन ऐसा बना दिया है कि जो जहन बिल्कुल एंटी तफवीज है, एंटी तफवीज। ठीक है, इस स्कूल सिस्टम से जो भी पढ़ करके निकलता है, जितना ज्यादा अच्छे उसने ग्रेड्स हासिल किए होंगे ना, इस स्कूल सिस्टम के अंदर जितने अच्छे ग्रेड्स हासिल किए होंगे ना, उतना ही वो शख्स एंटी तफवीज बन जाता है, उतना ही वो शख्स एंटी तफवीज बन जाता है, एंटी सुपुर्दगी बन जाता है। क्योंकि इस स्कूल सिस्टम के अंदर ग्रेड्स के जरिए से ना इंसान के तकबर को जगाया जाता है, हैं? तमगे दे दे करके, ग्रेड्स दे दे करके उसके तकबर को जगाया जाता है। ठीक है, उसके अंदर खुद पसंदी को पैदा किया जाता है, खूब उसके अंदर पंप किया जाता है उसकी खुद पसंदी को, ग्रेडों के जरिए से, तमगों के जरिए से। ठीक है, और ऐसा शख्स जो होता है ना, फिर किसी को अपनी खातिर में नहीं लाता, फिर किसी मौलाना साहब के सामने, किसी शेख साहब के सामने, किसी पीर साहब के सामने तफवीज करना, ये तो यानी ये तो शिर्क, वो उसको शिर्क कहना शुरू कर देता है फिर। ठीक है ना, वो उसको क्या कहना शुरू कर देता है? शिर्क कहना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं हमारे यहाँ कराची में, ये हरकत हमारे साथ हो चुकी है। हरकत नहीं, वो तो एक दूसरा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो जरा तमीज के दायरे से गिरा हुआ लफ्ज है। तो जिस वजह से आपके सामने इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो वो हरकत हमारे साथ ये हो चुकी है, क्योंकि हम सारे के सारे तकरीबन इसी स्कूल सिस्टम से पढ़ करके निकले हैं ना, तो ये हरकत हमारे साथ हो चुकी है। ठीक है, हम तफवीज के खिलाफ तैयार हो चुके हैं, हमारी जहन साजी हो चुकी है, हमारा कल्ब सो कॉल्ड जो हमारी रूह कह लें, हमारी रूह जो है ना इस बात के ऊपर जम चुकी है, तफवीज मत करना, तफवीज मत करना, अपने आप को कभी सुपुर्द ना करना। ठीक है, यही मसला है सारा का सारा, कि हम तसव्वुफ के मशायख से बैत हो जाते हैं और मुराकबे भी कुछ ना कुछ कर लेते हैं और बहुत सारी चीजें कर लेते हैं, तहज्जुदें भी पढ़ लेते हैं, लेकिन तफवीज समझ में नहीं आती हमारे कि ये क्या है, ये क्यों कह रहे हैं ये तफवीज करने को, ये क्या चीज होती है, ये तो शिर्क है, ये तो तौहीद के खिलाफ है, ये तो फलाना गुना है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। ठीक है ना, ये सब क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर ये सारी चीजें बसा दी गई हैं, तो हम तफवीज के मुकाम से बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाते, तो उसका नुकसान क्या होता है फिर हमें। ठीक है, अब मैं अपनी जो बात मैं कह चुका हूँ उसी को जरा आपसे क्विज, तो तफवीज के मुकाम से जब आगे नहीं बढ़ पाते तो नुकसान क्या होता है। माशाल्लाह आप 8 दर्जे तो उबूर कर चुके हैं ना। ठीक है, 8 दर्जों के बाद फिर तफवीज का मुकाम आता है और तफवीज के मुकाम के ऊपर हम अटक जाते हैं। ठीक है, तो भाई यानी 8वां या 8 दर्जे तो पढ़ चुके हैं ना, तो फिर अच्छा है, कोई बात नहीं, अगर 10वां दर्जा हासिल नहीं हुआ कोई बात नहीं, है ना, ये भी तो एक जहन में ख्याल आता है ना। तो इसी वजह से आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि क्या वाकई कोई बात नहीं, कि अगर हम 10वें दर्जे पर नहीं पहुंचे नुकसान क्या होता है, तफवीज के दर्जे पर अटक जाने का नुकसान क्या होता है। अनाबत जोहत, ये क्या, ये कोई जवाब दे रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, मंजिल पे नहीं पहुंच पाते। अच्छा तो मंजिल पे पहुंचे क्यों भाई, कोई जरूरी है मंजिल पे पहुंचना, पीछे हम पढ़ते आ रहे हैं ना कि भी रिजल्ट्स डोंट मैटर, तो मंजिल डजन मैटर, मतलब क्या हो गया अगर मंजिल तक नहीं पहुंचे, जन्नत तक पहुंच ही जाएंगे किसी तरह, अल्लाह की रजा कैसे हासिल होगी, तो क्या और अल्लाह की रजा के बगैर गुजारा नहीं चल सकता आपका। अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी, इसलाह नहीं होती। अच्छा तफवीज का कोई एग्जाम्पल बता दीजिए जो हम औरतों की लाइफ में आती हो। बड़ा अच्छा सवाल किया है उसे आपने, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब दे दें तो फिर इंशाल्लाह। इन्होंने बड़ी अच्छी बात प्राइवेटली लिखी है कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, बड़ा अच्छा जवाब दिया वैसे उन्होंने। ठीक है, यानी इतनी सीढ़ियां चढ़ने के बावजूद, इतनी सब्र और शुक्र और इनाबत और तवक्कुल और सब कुछ करने के बावजूद खुदा तो मिला नहीं, तो ना खुदा ही मिला और ना विसाले सनम, उधर जो मजे करने थे उधर से भी महरूम हो गए, राइट, उधर ही कुछ नाच गाना और ड्रामे श्रामे और सीरियल वगैरह देख लिया करते थे, तो उधर ही जरा फायदा हो जाता, ना उधर के रहे ना इधर के रहे। बड़ा अच्छा जवाब है, लेकिन ये जवाब सही है नहीं। ठीक है, तो सही जवाब क्या है, शैतान हमें वापस नीचे गिरा देता है, गिरा सकता है। ठीक है, ये है सही जवाब। अभी आपके सामने कुरान की आयत पढ़ी थी ना, इन्ना इबादी लैस लका अलैहिम सुल्तान। ठीक है, ये आयत कि सुल्तान तेरा नहीं चलेगा, ए शैतान तेरा जोर नहीं चलेगा, ये किन लोगों के लिए है, ये रजा वाले बंदों के लिए है। ठीक है, ये मुकाम तफवीज के बगैर नहीं मिल सकता, तो जब तक ये मुकाम नहीं मिलेगा, शैतान का जोर तो चल सकता है ना, सही है, शैतान का जोर चल सकता है ना, तो जितनी इबादतें करी हैं, जितने वज़ाइफ किए हैं, जितना जो है वो तस्बीहात पढ़ी हैं, जितने जो है वो सदके खैरात किए हैं, इस शैतान के लिए उन सब को बर्बाद कर देना अभी भी मुमकिन है। बात समझ में आ रही है, अभी भी मुमकिन है। जिसके लिए याजिस एक सिंपल सी मिसाल देता है कि आप कोई जब मुल्क के अंदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनते हैं ना, सड़कें बनती हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, स्कूल्स बनते हैं, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स और सारी चीजें बनती हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपने अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट नहीं किया दुश्मन मुल्क के हमले से, दुश्मन मुल्क के हमले से बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट नहीं किया। तो जब तक दुश्मन मुल्क ने एटमी हमला नहीं किया, मिसाइल से हमला नहीं किया, तब तक तो आपके ये हॉस्पिटल्स और सड़कें और सारी चीजें महफूज रहेंगी, है ना। लेकिन अगर उसने मिसाइल्स फेंक दिए, राइट, डेजी कटर किस्म के बॉम्ब्स फेंक दिए, तो जो बिल्डिंग्स बनाने में आपने 20 साल लगाए थे, 10-15 साल तो लगते हैं ना। अभी हम देख रहे हैं ना यहाँ पे कितनी बिल्डिंग्स बन रही हैं, 10 साल से तो मैं देख रहा हूँ ये बिल्डिंग्स बनी चली जा रही हैं, बनी चली जा रही हैं, बहुत सारी अभी तक मुकम्मल नहीं हुई, ठीक है। 10 साल 15 साल 20 साल आपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर लगाए, लेकिन दुश्मन मुल्क का एक हमला, कितनी देर लगती है इनको बर्बाद करने में, कितनी देर लगती है, मिनट भी नहीं लगते, मिनटों में ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल यही मामला हमारे आमाल का भी है। अगर शैतान से हिफाजत नहीं हुई तो वो लम्हों में इन सारे आमाल को जाया करवा सकता है, लम्हों में जाया करवा सकता है, ठीक है ना। इस वजह से हम 8वीं सीढ़ी पर राजी नहीं हो सकते कि बस 8वीं सीढ़ी तक तो पहुंच गया हूं, 7वीं तक तो पहुंच गया हूं, 6ठी तक तो पहुंच गया हूं, कोई और तो इतना भी नहीं पहुंचा। नहीं, हमने अपनी टारगेट को 10वीं के ऊपर ही रखना है। मैंने 10वीं को टारगेट बना करके अपनी जिंदगी गुजारनी है, अल्लाह ताला से 10वीं सीढ़ी मांगनी है, 10वां मुकाम मांगना है, रजा का मुकाम मांगना है, ठीक है। और शैतान से हिफाजत तो मांगते ही रहना है हर वक्त, ठीक है। ये होता है, ये एक खशियत की कैफियत इसको कहते हैं कि सीढ़ियां भी तय कर रहा है, ऊपर भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, लेकिन शैतान के हमलों से डरता भी जा रहा है, डरता भी जा रहा है, क्योंकि शैतान किसी वक्त भी उसको खींच के नीचे गिरा सकता है, ठीक है। 10वीं सीढ़ी तक पहुंचे बगैर शैतान से हिफाजत नहीं होती है, ठीक है। तो ये है नुकसान, और ये कोई छोटा नुकसान तो नहीं है ना, सही। इतनी मेहनत करी और फिर भी ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ठीक है। बाकी इन्होंने जो सवाल पूछा था कि तफ्वीज की कोई एग्जाम्पल बता दीजिए जो हम औरतों की लाइफ में आती हो, तो देखिए तफ्वीज बजाहिर बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है। अल्लाह ताला ने ये जो नबियों का सिस्टम बनाया ना, जिसको सुन्नत का सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है, ये सुन्नत का सिस्टम जो है ना, ये एक्चुअली सबसे आसान सिस्टम है, ये सबसे आसान सिस्टम है। देखें अल्लाह के नबी का सिस्टम है ना, अल्लाह के यानी अल्लाह ने ये अपने नबी को भेज करके ये सिस्टम बनाया ना, तो नबी जो होता है ये तो रहमत होता है, अल्लाह की रहमत होता है ना। तो नबी का जो सिस्टम होता है सुन्नत वाला सिस्टम, तो ये तो रहीमी वाला सिस्टम होता है, आसानी वाला सिस्टम होता है, ठीक है। तो इस वजह से ना, इस सिस्टम में अगर हम वाकई इस सिस्टम को समझ करके इसमें दाखिल हो जाए ना, यानी नबियों वाले, देखें आप लोगों को एक मैसेज लिखा था कुछ दिन पहले, ठीक है, किसी ने कोई सवाल ही नहीं पूछा उसके ऊपर भी, आपने क्या लिख दिया है, हमारे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा। और तो मुझे यकीन है कि इस पल्ले तो सबके नहीं पड़ा होगा वो, ठीक है, क्योंकि बात उसके अंदर बड़ी तफसीली थी, ठीक है। क्या लिखा था पिछले दिनों कि ये जो ईमान लोगों का खत्म हो रहा है, खुसूसन अमेरिका, कनाडा, यूरोप वगैरह के अंदर, तो इसका हल क्या है? इतने दीनदार लोग, इतने मेहनत करने वाले लोग, इतने अपनी औलाद के बारे में फिक्रमंद लोग, उनकी औलादें जो है वो ईमान को छोड़ रही हैं, तो इसकी क्या क्या हल था फिर इसका? कैसे बचाएं फिर अपनी अपनी औलाद की ईमान को, राइट? या क्या गलती हो रही है कि जिसकी वजह से इतने मेहनतें करने के बावजूद ईमान महफूज नहीं रह रहा, ठीक है। तो उसमें क्या बताया था, किसी को याद है क्या उसका हल क्या था, कैसे ईमान की हिफाजत करेंगे अपने बच्चों की? एनीवन? नियत, नियत चेक करके, सही नियत, और बस सही नियत। दूसरा सुन्नत, सुन्नते सहाबा को फॉलो करें, ठीक है, सहाबा की सुन्नत पे अमल करें। ये दो काम जो है ना, इसमें बहुत गलतियां हो रही होती हैं। ना तो नियत ठीक होती है, नियत भी क्या होती है, हमारा कल्चर महफूज हो जाए, राइट, हमारे बच्चे हमारी बात मानना शुरू हो जाएं, अल्लाह की नहीं, रसूल की नहीं, हमारी बात मानना शुरू हो जाएं, नियत गलत है, कल्चर महफूज हो जाए, है पाकिस्तानी कल्चर, इंडियन कल्चर, अमेरिका में भी, अमेरिका यानी कनाडा में भी पाकिस्तानी और इंडियन कल्चर चलना चाहिए, नीयत गलत है। तो नीयत भी सही नहीं होती है। आमाल ऊपर से बहुत सारे हो रहे होते हैं लेकिन नीयत भी सही नहीं होती है अक्सर मौका पर। लेकिन कभी नीयत ठीक भी होती है लेकिन तरीका सही नहीं होता। ठीक है, तो तरीका कौन सा वाला इख्तियार करना है? सहाबा वाला तरीका इख्तियार करना है। और सहाबा की जो सुन्नत थी ना, सहाबा की सुन्नत का जो लफ्ज इस्तेमाल किया था, आप लोगों को पूछना ये चाहिए था कि भाई आपका मतलब क्या है सहाबा की सुन्नत से? व्हाट डू यू मीन बाय सहाबा की सुन्नत? हम तो नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत आज तक सुनते हुए आए थे, हम तो आज तक यही सुनते हुए आए थे ना कि नबी सरसम की सुन्नतों पर अमल करना चाहिए। आपने एक नई छोड़ दिया आकर के, है एक नई फुलन नया फुलन तरू छोड़ दिया, सहाबा की सुन्नत पे अमल करना चाहिए। तो आप कहना क्या चाहते हैं? किसी ने नहीं पूछा, 60 से ज्यादा खवातीन हैं इस ग्रुप के ऊपर, एक ने भी नहीं पूछा कि सहाबा की सुन्नत ये कहाँ से लेकर के आया भाई। तो सहाबे की कौन सी वाली सुन्नत की बात हो रही है? एक तो ये है कि नबी अलैहिस्सलाम की जो सुन्नतें हैं वो सारी की सारी सुन्नतें हम तक पहुंची कैसे? सहाबा के जरिए से पहुंची हैं। तो सहाबा की सुन्नत में तो नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतें शामिल हैं। ठीक है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम को हमने कोई देखा तो है नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो हमने कभी तस्वीर भी नहीं देखी ना कभी कोई और चीज देखी, सब कुछ तो सहाबा के जरिए से ही पहुंचा है ना। तो सहाबा की सुन्नत में नबी की सारी सुन्नतें शामिल हैं, पहली बात। और दूसरी बात क्या है? नबी के बात को आंख बंद करके कबूल करना, यह है सहाबा की सुन्नत। माशाल्लाह, बहुत अच्छा जवाब दिया। खैर, आपसे सवाल तो पूछा नहीं था लेकिन अच्छी बात करी इन्होंने। ठीक है, सहाबा की क्या सुन्नत थी? सहाबा की सुन्नत यही थी जहां पे आके शैतान आके रोक लेता है हमें, सुपुर्दगी। ये सुपुर्दगी थी। ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम के सामने अपने आप को सुपुर्द कर देना, राइट। ये जो तफवीज का मुकाम था ना, ये सहाबा को हासिल था। सिर्फ ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में नहीं रहते थे, ठीक है, सोहबत में रहने वाला खाली सहाबी नहीं होता, ये बात पता है, क्योंकि मुनाफिकीन भी सोहबत में रहते थे लेकिन मुनाफिकीन को तो सहाबी नहीं कहा गया, उनको तो सोहबत का अजर नहीं मिला, हालांकि वो सोहबत में रहते थे। तो सोहबत का मतलब क्या होता है? देखिए कितना मतलब समझना पड़ता है, अल्फाज से बात समझ में आ गई होती तो फिर मौलवियों की तो नौकरी खत्म हो जाती है ना फिर उसके बाद। मजाक में कह रहा हूँ, नौकरी का मसला नहीं होता, ठीक है, मौलवियों की नौकरी वैसे भी अल्लाह के साथ होती है, अल्लाह ताला ने उनको रिस्क पहुंचाना होता है, लेकिन ऐसी बात समझाने के लिए कि अगर अल्फाज सुन करके गैर मौलवियों की बात समझ में आ गई होती तो फिर मौलवियों की जरूरत ही क्या थी, है ना। अल्लाह ताला ने भी तो मौलवियों का सिस्टम बनाया है ना, तो इसी वजह से बनाया है कि अल्फाज से बात नहीं समझ में आती ना। ठीक है, तो सोहबत का मतलब क्या है? सोहबत का मतलब है तफवीज, अपने आप को सुपुर्द कर देना, ये वाली सोहबत मकबूल है, दूसरी सोहबत मकबूल नहीं है। ठीक है, तो सहाबा की सुन्नत जो है ना उससे मुराद असल में यह है, जो कि यानी सहाबा ने काम किया था जिसकी वजह से उनको बड़ा मुकाम मिल गया, उनका ईमान महफूज हो गया, अल्लाह की रजा मिल गई ना उनको, कुरान के अंदर रضي الله عنهم ورضوا عنه, तफवीज की वजह से मिली ना उनको। तो उन्होंने अब बात को, हम क्या करें भाई, हमने भी बात वही आती है कि हमारे जो मशायख होते हैं ना, तो हमें भी असल में उनके सामने तफवीज का अमल करना चाहिए। ये आसान भी है, इसके लिए हमारे पास सहाबा का मॉडल भी मौजूद है, ठीक है ना। और जो शेख होता है ना, जैसे कि नबी अलैहिस्सलाम सहाबा के शेख थे, उसी तरह से जो हमारे शेख होते हैं ना, ये भी बहुत बहुत आसानी का मामला हमारे साथ रखते हैं, बहुत ज्यादा जो है ना वो यानी दरगुजर करते हैं और बहुत हमारे हालात का लिहाज करते हैं, बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस हमसे नहीं रखते, जो हमारे लिए मुश्किल हो पूरा करना, ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते, ऐसे डिमांड्स और ऐसे कमांड्स वगैरह हमें नहीं देते हैं। तो ये सबसे आसानी वाला रास्ता है, इसके जरिए से बहुत बड़ा गोल जो है बहुत आसानी से हासिल हो जाता है। ठीक है, तो सहाबा की सुन्नत पे अमल करेंगे तो तफवीज जो है ना वो बहुत आसानी से हासिल हो जाएगी। और बाकी ये कि इसकी कोई मिसाल जो आप पूछ रही थी, तो मिसाल हर बंदे की जिंदगी में अलग अलग होती है। आप कोई बात पूछते हैं, आपको जब वो बात कही जाती है कि भाई ऐसे नहीं ऐसे कर लें, ठीक है, तो अगर आप उसके ऊपर अमल कर लेती हैं तो यही तफवीज है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग ऑलरेडी इसके ऊपर अमल कर रहे हैं तो अल्लाह ताला उनको तफवीज का कुछ ना कुछ मुकाम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अता फरमा रहा है, और उनके लिए आगे बढ़ना जो है वो आसान हो रहा है। और जो लोग जाहिर है इस चीज से अभी तक अपने आप को पीछे रखे हुए हैं, वो अमाल वगैरह करते रहते हैं, लेकिन कभी भी वो तफवीज के मुकाम तक नहीं पहुंच सकेंगे, और जब तफवीज के मुकाम तक नहीं पहुंच सकेंगे तो कभी भी रजा के मुकाम तक नहीं पहुंच सकेंगे, और रजा के मुकाम तक नहीं पहुंच सकेंगे तो शैतान उनको बहुत आसानी के साथ ऑल द वे डाउन द लैडर बहुत आसानी के साथ खींच सकता है। तो इस चीज़ से हमें डरना चाहिए और नबी अलैहि सलाम के जो जो सुन्नत तरीक़ा है उस सुन्नत तरीक़े को अडॉप्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।